अयांश मेहरा को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी आरवी को देखे, छुआना तो दूर की बात थी, और जिस शख्स ने आरवी को गलत नज़र से देखने की घिनौनी हरकत की थी और अयांश को पता चलते ही वो उसे कैसे छोड़ सकता था। इतना ही नहीं, उसने अपने फ़ोन में आरवी की कुछ तस्वीरें भी गलत तरीके से खींच ली थी, जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये गंदे इरादे से किया गया था। मिस्टर अयांश मेहरा के अनुसार हर गलती की सिर्फ सज़ा होती है, माफ़ी नहीं, और वो शख्स ऐसा गुनाह कर बैठा था जिसकी सज़ा सिर्फ मौत थी। मौत। कोई पसंद आ जाए ये गलत नहीं, गलत सोच के साथ किसी को पसंद किया है ये गलत है। फ्लैशबैक। आइसक्रीम ना हो तो फंक्शन फंक्शन ही नहीं लगता मुझे तो, आरवी मुंह में आइसक्रीम भरते हुए तारा मालती से बोली, जो उसके साथ ही खड़ी थी। थोड़ी दूरी पर खड़ा मैनेजर मुस्कुराते हुए अपने होठों पर जीभ फेरने लगा। इतना ही नहीं, वो बार बार किसी न किसी बहाने से आरवी के आसपास मंडराने लगा। उसकी गंदी नज़रें आरवी के बदन पर ही टिकी थीं और आरवी इससे अनजान थी, पर अयांश नहीं। विनाशकाल विपरीत बुद्धि। मैनेजर ने आरवी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। एक दफ़ा उसने आरवी की पीठ छू भी ली। आरवी कुछ प्रतिक्रिया देती उससे पहले ही उसने सॉरी मैम बोल दिया। आरवी को लगा कि यह अनजाने में हुआ होगा, वो कुछ नहीं बोली, ना ही उसने ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो आइसक्रीम खाने और मालती तारा के साथ बातों में इतनी व्यस्त थी कि उसे वो मैनेजर गलत लगा ही नहीं। उसे तो यूं लगा कि ऐसा हो जाता है, पर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था, इसकी भनक आरवी को लगी ही नहीं। वो मैनेजर फिर आरवी के पास चला आया और धीरे से अपना हाथ आरवी के थोड़े से खुले पेट की ओर ले जाने लगा, मन ही मन खुद से कहते हुए, रस मलाई जैसी है ये लड़की, बदन मलाई की तरह। पर छू पाता आरवी को उससे पहले ही अयांश ने वहां आकर उसके हाथ को पकड़ लिया और पलक झपकते ही उसे लेकर वहां से गायब हो गया। अयांश उसे खींचकर वहां ले आया था जहां कोई नहीं था। मैनेजर के हाथ पर अयांश की पकड़ बहुत मजबूत थी। दर्द से कराहते उसने अयांश की ओर देखा। अयांश की आंखें अंगारे उगल रही थीं। तभी एक जोरदार मुक्का अयांश ने मैनेजर के मुंह पर दे मारा और उसे जमीन चटा दी। मैनेजर कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वो उस जगह से गायब हो चुका था, या यूं कहिए अयांश मेहरा के ऑर्डर पर उसे वहां से गायब कर पुलकित के हवाले कर दिया गया था। अभी तक वर्तिका अभी की शादी संपन्न नहीं हुई थी, सब शादी में मग्न थे, तो इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला और ना ही अयांश ने चलने दिया। फ्लैशबैक एंड। सर, ये माफी के लायक नहीं है, इसने जो हरकत की है, जो घटिया काम किया है, उसकी कोई माफी नहीं बनती है। घर में बीवी है फिर भी दूसरों की बीवी पर गंदी नज़र डाली, शर्म भी नहीं आई इसे, इसके लिए कोई दया कोई माफी नहीं, पुलकित अयांश के पैरों में पड़े उस मैनेजर की ओर घूरते हुए बोला। जानता हूँ इसने जो घटिया हरकत की है मेरी बीवी के साथ, कोशिश की है मेरी बीवी को टच करने की, ये माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। कोई और भी होता आरवी की जगह तब भी माफ़ी नहीं मिलती, और यहाँ तो बात मेरी वाइफी की है, अयांश दांतों को भींचते हुए गुस्से भरे लहजे में बोला और एक ज़ोरदार किक उस मैनेजर को मारी जिससे वो थोड़ी दूरी पर जा गिरा और उसकी चीख निकल गई। तभी अयांश ने पुलकित को इशारा किया, वो वहाँ से चला गया। उस मैनेजर ने सहमी सी नज़रों से अयांश की तरफ देखा जो बहुत गुस्से से उसे ही देख रहा था। मैनेजर को अयांश में अपनी मौत दिखाई दी, वो चाहकर भी जुबान से कुछ न कह पाया। तभी पुलकित वापस आ गया, वो एक ड्रम को खींचकर वहां लाया था लोहे की जंजीर से। उस ड्रम में गर्म लावा था जो उस ड्रम में उबल रहा था, जिसकी भाप ऊपर तक उठती दिखाई पड़ रही थी। पुलकित ने अपने चेहरे पर प्रोटेक्शन पहना हुआ था और उसे आते देख अयांश ने भी शेरवानी से अपना प्रोटेक्शन निकालकर पहन लिया। पुलकित ने उस ड्रम को मैनेजर के पास लाकर छोड़ दिया और अयांश के पास आ खड़ा हुआ। गर्म लावे की तपिश से वो जगह भी गर्म होने लगी। ये नज़ारा देखकर उस मैनेजर की तो आंखें ही फैल गईं। उसने डर के मारे वहां से हिलने की कोशिश की, पर वो वहां से हिल पाता अयांश ने आकर उस ड्रम को एक जोरदार किक के साथ ही उस मैनेजर की ओर धकेल दिया। फिर क्या, वो गर्म लावा उस मैनेजर पर जा गिरा और वो एक चीख के साथ ही राख बन गया। वो एक भयानक मौत मर चुका था, पर इतने भयानक दृश्य को देखकर अयांश मेहरा और पुलकित रॉय भी भावहीन ही रहे। सर, आपको यहां आने की क्या जरूरत थी, पुलकित अयांश से बोला ही कि अयांश को अपनी तरफ घूरता पाकर उसने नजरें झुका ली। सॉरी सर, आई नो आप इस घटिया शख्स की मौत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, इसे खुद मौत की सजा देना चाहते थे, बट सर आज आपकी शादी है। तभी अयांश सख्त लहजे में बोला, मेरी शादी से पहले इस शख्स की बर्बादी होनी तय थी, जो मेरी जिंदगी पर गंदी नजर डालेगा वो तबाह होगा। और दोनों ने उस जगह की ओर देखा जहां अभी भी गर्म लावे की भाप निकलती दिखाई पड़ रही थी। दोनों उस जगह से अब दूर खड़े थे। तभी पुलकित बोला, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कोई हक नहीं बनता है इन्हें किसी भी लड़की की आबरू से खिलवाड़ करने का। लड़की की इज्जत ना करना, गलत तरीके से उनकी फोटो लेना, उनको ब्लैकमेल करना, उनसे बदतमीजी करना, किसके लिए? खुद को अच्छा लग रहा है इसलिए? बेचारी लड़कियों को तो पता भी नहीं चलता उनके साथ क्या हो रहा है, और फिर ऐसे के हाथों चढ़ जान गंवा बैठती हैं और ऐसे बच भी जाते हैं। समझ नहीं आता, जो ये सब करके औरतों का जीना हराम कर देते हैं वो खुद घिनौनी हरकत कर चैन की सांस कैसे ले लेते हैं। उनकी सांसें तो उसी पल ही छिन जानी चाहिए। जो भी ऐसा शर्मनाक काम करते हैं उनको ऐसी भयानक मौत ही मिलनी चाहिए। शरीर क्या, रूह भी कांप उठे। हमारा कानून कभी ये चीज नहीं कर पाएगा, और पता भी नहीं कितना वक्त लगेगा हमारे कानून को यहां तक आने में। पर हां, वादा है मेरा खुद से, कानून ले जितना वक्त लेना है मुझे। जब भी ऐसे दरिंदे नजर आए मैं वहीं के वहीं उनको मौत के घाट उतार दूंगा। बोलते पुलकित ने अयांश की तरफ देखा तो अयांश ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तभी अयांश का फोन रिंग किया। फोन चेक किया तो आरवी की कॉल थी। ये देखकर पुलकित मुस्कुराते हुए बोला, जाइए बॉस, मिसेज मेहरा मिस्टर मेहरा का वेट कर रही हैं। अयांश ने मुस्कुराते हाँ में सिर हिलाया। जा रहा हूँ। तुम आ रहे हो शादी में? पुलकित मुस्कुराते हुए बोला, अफकोर्स सर, ऑर्डर है आपका तब भी आ रहा हूँ, नहीं भी है ऑर्डर तब भी आ रहा हूँ। प्लीज सर मना मत करना, एंड डोंट वरी, मैं शादी में आया तब भी मेरे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। अयांश, ओके, बट बी केयरफुल। पुलकित, यस बॉस। जीवन ज्योति आश्रम। आरवी विनीत को साइड में ले आई और विनीत से पूछा, विनीत जी, काफी देर से देख रही हूँ, आप मुझे बता नहीं रहे हैं मिस्टर मेहरा कहाँ है? क्या बोला था आपने? वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने गए हैं, पर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। शादी का मुहूर्त हो गया है और उनकी कोई खबर ही नहीं, ना वो आए ना ही मेरा फोन उठा रहे। कहाँ है मिस्टर मेहरा? विनीत कुछ कहता तभी अयांश की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ वाइफी। आरवी विनीत दोनों ने फौरन आवाज की दिशा में देखा। थोड़ी दूरी पर ही अयांश खड़ा था, वो भी मुस्कुराते हुए। आरवी भागी अयांश के पास चली आई, विनीत भी आ गया। अयांश के पास आते ही आरवी एक पल तो अयांश को हक कर लेती है और दूसरे ही पल अयांश से अलग होते बोली, कहाँ चले गए थे आप? मैंने कहा था ना आपसे, आज आप मेरे साथ मेरे पास ही रहना, मेरी आंखों से दूर मत होना, पर आप तो गायब ही हो गए। नहीं चाहिए मुझे कोई और सरप्राइज, मुझे बस आप चाहिए। कहाँ थे आप? आरवी बोले जा रही थी कि अयांश इसका चेहरा हाथों में भर बोला, मैं यहीं था, मैं यहीं हूं। आगे आरवी कुछ बोलती, अयांश उसका हाथ पकड़ उसको मंडप की ओर लेकर चल पड़ा। चलो शादी करते हैं। अयांश का ये कहना आरवी को शांत कर गया और परेशान सा चेहरा उसका खिल उठा, होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अयांश आरवी के साथ मंडप की ओर जाते हुए विनीत की ओर देखता है, जो उसकी ओर हैरानी से देख रहा था। ये देख अयांश मुस्कुरा दिया और अयांश की मुस्कुराहट देखकर विनीत ने दाएं बाएं सिर हिलाते आह भर ली। कितना अच्छा होता ना विनीत जी, आपकी शादी भी हमारे साथ ही हो जाती, अभी विनीत से बोला। ये सुनकर विनीत हंस दिया, इतनी भी क्या जल्दी है, सब शादियां एक साथ हो जाती हैं अभिनव, तो फिर शादी के लिए बचता कौन, कोई एक आधी शादी बाद में भी तो होनी चाहिए ना एंजॉय करने के लिए। अभी बात तो सही है, आपकी शादी भी हम धूमधाम से करेंगे। विनीत, शादी तक मेरा मामला पहुंचे तो सही। अभी पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, कुछ कहानियां देर से शुरू होती हैं, पता है ना आपको, पर होती जरूर हैं, आपकी भी प्रेम कहानी बन जाएगी, आपकी भी शादी हो जाएगी विनीत जी। तभी वहां मालती आ गई, उसे अभी के बोले आखिरी शब्द सुनाई पड़ गए थे, आपकी भी शादी हो जाएगी विनीत जी। वो उनके पास आते बोली, किससे होगी इनकी शादी? क्रमशः